ಕಿಂಚಿದೋಹಂ ತೀರ್ಥಾಸ್ಪದಂ ಶಿವ ವಿರಿಂಚಿನುತಂ ಶರಣ್ಯಂ ಭೃತ್ಯಾರ್ತಿಹಂ ಪ್ರಣತಪಾಲ ಭವಾಬ್ಧಿಪೋತಂ ವಂದೇ ಮಹಾಪುರುಷತೆ ಚರಣಾರವಿಂದಂ ಕರ್ಣವಾಸ 3 जून 1938 जेठ सुधी पांचम समत 1995 दोपहर यही समय होगा। ये जो काम है क्रोध है ये ही आत्मा का पतन करने वाले हैं, इसलिए इनका नाश कर देना बहुत जरूरी है। मन के कहे कहे मत चलो, मन के ऊपर शासन करो, मन के ऊपर बुद्धि का शासन चलता है तो बुद्धि के द्वारा मन को वश में करना चाहिए। बिना बुद्धि के मन को वश में करना पहाड़ को मुट्ठी में लेना है, पहाड़ पहाड़ मुट्ठी में लेना, बुद्धि के द्वारा मन को वश में करो। हम जितने पाप करते हैं उसमें आसक्ति खास कारण है, इसलिए पापी काम को मार डालना चाहिए। बहुत से लोग मानते हैं कि पाप तो प्रारब्ध से होता है, ये धारणा बिल्कुल मन से निकाल देना चाहिए। हम जो पाप करते हैं वो भाग्य के अधीन होकर करते हैं, ये बहुत बड़ी मूर्खता नहीं, अपराध है। आज हमको लाख रुपए मिले तो उसका हम त्याग कर सकते हैं, इसी तरह झूठ कपट लोभ आदि का हम त्याग कर सकते हैं। त्याग से शांति मिलती है, त्यागा शांति अनंतरम। यदि यह मान लिया जाए कि हम तो भाग्य से पाप करते हैं तो फिर बड़ा अनर्थ हो जाएगा, घोर दुख उठाना पड़ेगा। वे महान दंभी पाखंडी पुरुष हैं जो झूठ कपट चोरी व्यभिचार ये सब भाग्य के अधीन करना पड़ता है ऐसा मानते हैं। यदि कोई ऐसा कहता भी हो तो उसकी बात मत सुनो, वह स्वयं भी घोर नरक में जाता है और उसके बहकाने में आने वाले लोग भी घोर नरक में जाते हैं। पाप कभी भाग्य कभी पाप नहीं कराता, यह बात भी मत मानो, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, ईश्वर ऐसा प्रारब्ध बनाता ही नहीं। यदि ऐसा बनावे तो फिर ईश्वर की क्या दया और ईश्वर का क्या ईश्वरत्व। चोरी और डकैती का फल तो दंड होता है, इसी तरह भगवान भी पाप का फल दंड देते हैं, ये बात ठीक है। परंतु पाप को हमारा कर्म फल प्रदान करे, ये कैसी उल्टी बात भगवान पर डालते हैं। और यदि भगवान हमको कर्म का फल पाप देते हैं तो फिर पाप का फल दंड क्यों देते हैं। यदि वे कर्म से पाप लिख दिया कि भाई कर्म के फल से पाप करता है तो फिर भगवान भोगो, क्योंकि उसी ने हमारा भाग्य बनाया है। फिर तो शास्त्र का उपदेश व्यर्थ है, सत्यम वद धर्मम चर इत्यादि बातें व्यर्थ हैं, क्योंकि कह देंगे कि हमारे प्रारब्ध में तो सत्य बोलना है ही नहीं, हम कहां से बोलें। धर्मम चर, धर्म लिखा हुआ ही नहीं है तो कैसे धर्म का आचरण करें, गड़बड़ हो जाएगा, शास्त्र झूठे हो जाएंगे। इसलिए बात बिल्कुल झूठी है। ईश्वर तो हमें अच्छे काम में सहायता देता है, जो कल्याण के रास्ते पर चले उसमें भगवान की कृपा खूब काम करती है। भगवान ने भी कहा कि योग क्षेमम वाहम्यहम्। जो भगवान के प्रतिकूल काम करेगा उसे भगवान दंड देंगे। इसलिए शास्त्रों का, भगवान के वचनों का मतलब न समझकर दूसरा ही अर्थ निकालकर उसी तरह कर्म करना खुला नरक का दरवाजा है। मुक्ति अथवा भगवत प्राप्ति से ऊपर कोई भी चीज नहीं है, वही परम आनंद है, परम शांति है। सारी दुनिया उसकी प्रशंसा करती है, यह सर्वोपरि चीज है। इसी के उपार्जन में मनुष्य का शरीर मिला है, उसकी प्राप्ति के बाद मनुष्य का पतन कभी नहीं होता है, महाप्रलय के बाद भी वो नष्ट नहीं होता है। प्रलये न व्यथान्ति च, स्वर्ग का गया हुआ तो वापिस आता है, किंतु जिसकी मुक्ति हो जाती है वह सदा के लिए परम शांति को प्राप्त होता है। कोई ऐसा भी कहते हैं कि मुक्त जीव होता है वो भी आता है। ऐसा यदि किसी के मन में भाव है भी तो उसकी भी मुक्ति नहीं होती, क्योंकि मुक्त जीव वापिस आएगा तो फिर मुक्ति का मतलब ही क्या रह जाएगा। उपनिषदों में आता है कि नचिकेता यमराज के पास जग गया, यमराज ने 3 वर मांगने के लिए कहा। अंत में ये वरदान मांगा कि यमराज जी आत्मा है अथवा नहीं बताओ। यमराज जी ने कहा कि नचिकेतन तुम ये प्रश्न मत करो और कुछ कर, नहीं मैं तो यही प्रश्न करूंगा। यमराज जी उसकी परीक्षा कर रहे थे, कहा कि तू मेरे से लंबी आयु ले ले, तू मेरे से धन ले ले, लेकिन ये मत पूछ कि आत्मा रहती है कि नहीं। नचिकेता ने कहा क्यों यमराज जी, कहने में आपको क्या दिक्कत है। यमराज जी ने कहा कि मेरे कहने का उल्टा अर्थ लगा लोगे, इसलिए कहता हूं तुम्हारी जिज्ञासा बढ़ाओ। नचिकेता ने कहा कि मैं तो और कोई वरदान नहीं मांगता, यही वरदान मांगता हूं कि आत्मा है कि नहीं है। बड़ी प्रबल जिज्ञासा हुई तो यमराज जी को हार करके कहना पड़ा कि आत्मा है। न जायते म्रियते वा कदाचित। अब यमराज जी तो मृत्यु के देवता है, वो भी मानते हैं कि आत्मा मरती नहीं है। अब जो आत्मा को भी मरने वाला मानता है कितनी गलती करता है। यह एनम वेत्य हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम। शरीर के मरने पर आत्मा का नाश नहीं होता, न आत्मा शस्त्र से कटता है न आग से जलता है, भगवान तो समदर्शी हैं। पूर्व जन्म के अनुसार ही भगवान मनुष्य को बनाते हैं, जैसे किसी को धनी, किसी को गरीब, किसी को पशु। कोई कह दे कि पहले पहले हम थे ही नहीं, ये बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नहीं होते तो 84 लाख योनियों में कौन जाते हैं। आप विचार करो, आप छोटे बच्चे थे, 1 बरस के थे, तो आपको कुछ पता है क्या कि मैं ये करता था? कहते नहीं। 2 वर्ष की अवस्था में क्या किया यह भी पता नहीं। फिर आप जन्म की बात और जन्म से पहले की बात कैसे जान सकते हो कि हम पहले नहीं थे? अशुभ वाली बात आ गई। आपको तो ये भी पता नहीं है कि 10 दिन पहले शाम को कौन सा साग खाया है। अब आप जन्म जन्मांतरों की बात कहां से, कैसे, किस कारण से बोल सकते हैं, क्या अधिकार बोलने का? मनुष्य का जब जन्म पहली बार ही हुआ ऐसा मानते हो तो जन्मते ही बच्चा रोता क्यों है? उसको रोना किसने सिखाया? इससे सिद्ध होता है कि पूर्व में ये थे, इनका स्वभाव था। बालक हंसता भी है, हंसना किसने सिखाया? माता दूध देती है तो बच्चा दूध को कैसे खींच लेता है, किसने सिखाया? इससे सिद्ध होता है कि पूर्व में जन्म हुआ था। मनुष्य दुख पाता है इसलिए सिद्ध होता है कि उसने पहले पाप किया था। जो आत्मा का नाश मानता है वही जन्म लेता है, और जो आत्मा को अविनाशी नित्य मानता है वो मुक्त हो जाता है। एक भाई कहता है कि परलोक है, फायदा बता रहे हैं। एक भाई कहता है परलोक है, एक कहता नहीं है, तो इसका फल यही होगा। यदि परलोक होगा तो मानने वालों को तो परलोक और नहीं मानने वाले को नरलोक, नरक, नरकलोक मिलेगा, क्योंकि वह तो परलोक के लिए यत्न करेगा, और नरक में जाना है वो लोग परलोक के लिए यत्न करेगा ही नहीं। तो परलोक को मानने वाले आदमी को ही लाभ हुआ, नहीं मानने वाले को नरक मिला। जो त्याग में सुख है, क्योंकि संयोग का वियोग होना अवश्य है, संयोग वियोग को लेकर है, प्रिय वस्तु के वियोग में दुख होता है, इसलिए वियोग के पूर्व ही हमें त्याग कर देना चाहिए भीतर से। एक चील थी, उसके मुंह में मांस का टुकड़ा था, उसके पीछे बहुत सी चीलें चलने लगी और बहुत सी चीलें उसको नोचने लगी, तब उसने अपने चोंच से मांस का टुकड़ा फेंक दिया, तो सब जाकर के मांस के टुकड़े पर पड़ी और वो छूट गई। तो त्याग करना अपने हाथ की बात है, प्राप्त करना हाथ की बात नहीं है। त्याग में पूर्ण स्वतंत्रता है, त्याग में पूर्ण शांति है। त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। जो रुपयों को त्यागता नहीं है तो निश्चय रखो रुपयों का वियोग तो होगा ही। जब रुपयों का वियोग होता तो उस समय उसको कितना दुख होगा। इसलिए विचारवान पुरुष को विवेक के द्वारा पहले ही त्याग देना चाहिए। त्याग देने का अर्थ सारे गृहस्थ रुपए पैसे छोड़कर चले जाओ ये नहीं है। मूर्खता से त्याग नहीं होता है, विवेक से त्याग। रुपयों को महत्व मत दो, इनका काम तो केवल वस्तु को देने लेने में ही है, ज्यादा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसको बहुत बड़ा समझ लिया। विवेकवान पुरुष होता है वो सब पदार्थों को नाशवान समझ करके, क्षणभंगुर समझ करके, इनसे अपना कोई संबंध नहीं मानता। यही त्याग है भाई। संबंध तो रहेगा ही नहीं, फिर संबंध करो तो नित्य वस्तु के साथ करो, अनित्य के साथ क्यों करो। संसार के जितने सुख हैं वो अनित्य हैं। उस अनित्य सुख से संबंध जोड़ना मूर्खता है। हम देखते हैं कि सब नाशवान, फिर इनमें अपना समय बिताया तो फिर घोर पश्चाताप करना पड़ेगा। कैसी विचित्र बात है, मनुष्य पुत्र का खूब पालन कर रहा है, खूब प्रेम कर रहा है, और वही रात्रि को मर जाए तो कितना दुख होगा। जो चीज आज है और कल नहीं है उसके लिए संबंध जोड़ना तो एकदम प्रत्यक्ष में मूर्खता है। परिवार में जन्म गया ठीक है, सेवा कर लो, बच्चा है तो लालन पालन करो, बड़ा है तो ठीक बात है, परंतु इतना क्या मोह करो कि विवेक ही खो बैठो। हुआ सो तो हुआ, अब तो कम से कम सावधान हो जाओ। इतनी आयु चली गई, शरीर अब जीर्ण शीर्ण की अवस्था में चल रहा है, अभी भी सावधान नहीं होते। आप विचार करो, कोई आदमी महीने भर तक रुपया इकट्ठा करते 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 गरीब से गरीब आदमी ने 100 रुपया इकट्ठा कर लिया, और उसी रात्रि को एक चोर आया और उसको ले गया। अब वो आदमी कितना रोएगा, वो रोना क्यों हो रहा है, रुपए के जाने का नहीं है, मूर्खता का रोना है। और लोग पूछते हैं भाई तुम क्यों रोते हो, क्या हो गया, वो कहता मेरा रुपया ले गया। ऐसे ही लोग हैं अभी चाहने का, कोई रुपया ले गया इसलिए रो रहा है। इसलिए नहीं रो रहा है, उसकी मूर्खता का परिणाम सामने आया इसलिए रो रहा है। आज 100 रुपये के वियोग से इतना दुख हो रहा है, सबसे वियोग होगा उस समय कितने आप अशांत रहोगे। इसलिए अविनाशी चीज का संग्रह करो। ये अविनाशी चीज प्रभु ही है। इस शरीर को खूब खिलाना पिलाना, हृष्ट पुष्ट रखना और अच्छे अच्छे श्रृंगार के वस्त्र पहनना, अत्र लगाना, ये कितनी पतन की बात है, कितनी मूर्खता है। आज ये आप शरीर है, इसको लेकर आप राजी होते हो, और कल मृत्यु हो गई तो थोड़ी देर में राख हो जाएगी, थोड़ी देर में। सज्जनों चेत करना चाहिए, समय तो अब बहुत थोड़ा है। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। भगवान ने अर्जुन को कहा कि शरणागत हो जाओ, मैं पाप से तुमको मुक्त कर दूंगा, पर ये नहीं कहा मैं तेरे को खूब आयु दे दूंगा। है उतनी आयु में ही काम निकालो। भगवान ने गीता में ये भी नहीं कहा कि जितनी आयु तुम्हारी मूर्खता में चली गई, अब मैं उस आयु को बढ़ा देता हूं, पीछे के दिन खत्म कर देता हूं, ये भी नहीं कहा। बल्कि कहा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। ध्यान रखो अर्जुन, संसार अनित्य है, और इसमें जहां तुम सुख देख रहे हो वहां बिल्कुल सुख नहीं है, तुम्हारा भ्रम है। इसलिए अपना काम बनाओ अर्जुन। जब तक अपना काम समाप्त नहीं होता तब तक विश्राम कैसे लेते हो? आपको नींद कैसे आती है? आपको हंसी कैसे आती है? वाह 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 सेठ जी, आपको ये दिन सुहाते कैसे हैं? मानव शरीर को आप क्यों व्यर्थ में खो रहे हो? जितना इससे काम लेओ लेओ ना, बढ़िए लोग हो। आपके पास कोई नौकरी करता है, वो यदि थोड़ी देर भी विश्राम करता है तो आपको खलता है कि मेरा पैसा यूं ही जा रहा है। और ये भगवान ने आपको कितने नौकर दिए, शरीर मन बुद्धि इंद्रियां, ये कहां जा रही है? आपका तो हित करती नहीं है, आपका खा रही है, और आप बेसुध हुए हो। खूब शरीर को काम में ले हो, श्रृंगारबाजी से अलग रखो, इन भोगों के लुभावनेपन में मत आओ। समयांतर में राख हो जाएगी राख, उस राख को देखो। खर्चा इस पर इतना कर दिया और फिर इसको काम में नहीं लेते। एक किसान था, उसने एक खेत लिया, उसमें कई चीजों की खाने थी, लेकिन वो 3 साल की मियाद थी। किसान बड़ा बुद्धिमान, उसने देखा कि 3 ही साल है, 3 साल में तो कोई मुझे रोकने वाला है नहीं, क्योंकि मैंने 3 साल के लिए टैक्स दे दिया है। अब उसने मशीनें लगा करके उसके खेत में बहुत चीजों की खान थी, वहां मशीनों से खान खोदने लगा, तो सोना चांदी जो निकला उसको इकट्ठा करता गया। और जब 3 साल पूरा हो गया तब उसने देखा अब इसमें कुछ भी नहीं रहा, सब सोना चांदी निकल गया। खूब आराम से वो चला गया, हंसते हंसते गया। सज्जनों, इसी तरह ये शरीर खान है, इसमें से रतन निकाल लो, नहीं तो ये खेत तो मिट्टी है तो मिट्टी हो जाएगी, मिट्टी छोड़ दोगे। ले लो इसमें से। एक बार देखो, बोलते ही आप लोग खुश हो जाओगे। एक बार बीकानेर नरेश एक आदमी से नाराज हो गए। अब देखो बीकानेर वहां पहुंच गया, कर्णवास के सत्संग में बीकानेर पहुंच गया और कर्णवास का सत्संग यहां पहुंच गया। देखो एक बार बीकानेर नरेश एक आदमी से नाराज हो गए और बोले चले जाओ, एक महीने में तुम अपनी चीजों को उठाकर चले जाना, एक महीने के बाद मैं तुमको बीकानेर राज्य में नहीं रहने दूंगा। उसने देखा कि अब बीकानेर राज्य में से इतनी चीजें कैसे ले जाऊं, मकान है, दुकान है, व्यापार है, कैसे ले जाऊं। मकान तो कोई उठाने से रहा, दुकान कोई उठाने से रहा। उसने एक बुद्धिमानी की, उसने मकान बेच दिया, दुकान बेच दी, व्यापार की वस्तुएं बेच दी, सब बेच करके और बड़ा खुशी खुशी एक महीने से पहले ही वो जगह छोड़ दी और आराम से दूसरी जगह चला गया, खूब आराम से रहने लगा। थोड़े दिनों में लोगों ने जाकर देखा कि वो आदमी कहां रहता है, वो जहां भी रहता है वहां पहुंचे तो वो तो पहले से ज्यादा सुखी है। इसी तरह मनुष्य लोक की बात है, इसमें से यदि हम चीजें ले लेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर पश्चाताप करना पड़ेगा। शरीर रुपए कुछ नहीं लेने पावेगा, सौ परात्र दुख पावही सिर धुनी धुनी पछिताय, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाय, सियावर रामचंद्र जी की जय। ये स्टाइल थी उनकी बोलने की। यदि आपको संग्रह करना है, इकट्ठा करना है, तो धर्म का संग्रह करो, नाम का संग्रह करो, भगवत चर्चा का संग्रह करो, सत्संग का संग्रह करो। वो चीजें संग्रह करते हुए छूट जाएगी, ये चीजें साथ में चलेंगी। बिल्कुल अलग अलग बात है। मनुष्य शरीर का पता नहीं कब मर जाए, सारे जीवन में जो संग्रह किया क्या काम आएगा। कोई तारीख तो है नहीं कि शरीर कब छूटेगा, इसलिए इससे लाभ उठाना चाहिए। इस विलायत में एक देश था, विदेशों में एक देश, उसमें 3 वर्ष तक राजा बना दिया जाता था, फिर भयंकर जंगल में छोड़ देते, बड़ी दुर्दशा होती थी, उसकी मृत्यु बड़ी खराब होती थी। पहले तो खूब हुक्म लगाया, अब जंगल में छोड़ दिया तो उसको बड़ी मुश्किल होती। एक बड़ा बुद्धिमान था, उसको राजा बनाया, उसका 3 वर्ष तक पूरा अधिकार था। पहले ही कह दिया 3 वर्ष तक मैं जो करूं, कोई बोल सकते हो, कोई नहीं बोल सकता। वो राजा बड़ा बुद्धिमान, उसने मंत्रियों को बुलाकर कहा आप लोग राज्य का प्रबंध करो, सारा भार आप पर है। और बोला कौन से जंगल में छोड़ते हैं राजाओं को, कि उस जंगल में छोड़ते हैं, चलो उस जंगल को साफ करो, महल बनाओ, किला बनाओ, खेती के लिए जमीन बनाओ, यहां से हीरे मोती सब भर भर करके और वहां पहुंचाओ, प्रजा के अंदर जो अच्छे पुरुष हैं उन सबको वहां भेज दो। सब लोग वहां जाने लगे, मकान बन गए, किला बन गया। और जब 3 वर्ष समाप्त हुआ तो वो बड़े खुशी खुशी जाने लगा। वो तो प्रतीक्षा कर रहा था कि कब बाबा 3 वर्ष पूरे हुए और कब उस सुंदर मकान में रहें। बड़े खुशी से वो विदा हुआ। लोगों ने क्या इतनी प्रसन्नता क्यों है, तो उसने उत्तर दिया कि मैंने 3 वर्ष का उपयोग किया है और जो मेरे साथ रह रहे हैं वो भी बड़े प्रसन्न रहेंगे। बड़ा खुश होकर के वहां से गया, सदा के लिए सुखी हो गया। इसी प्रकार ये संसार तो राजधानी है, इसमें 3 वर्ष की आयु का अर्थ क्या है कि 3 अवस्था होती है, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। और मरने के बाद जो विदेश जाना है वो परलोक है, और जो सारा धन है उसे भगवान के अर्पण कर दे। धर्म रूपी धन को खूब इकट्ठा करके भेजो, शरीर को भी उस काम में लगा देना चाहिए। ये धन आपके बहुत काम आएगा, अटल शांति मिलेगी। ये जितने जीव हैं इनमें जो चेतनता है वो साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। इनकी सेवा परमात्मा की सेवा है। खूब सेवा रूपी धन को इकट्ठा करो, ये धन साथ में जाएगा। अपनी सारी वस्तुओं को भगवान के अर्पण कर दो। एक बड़ा भारी व्यापारी था, वह एक जहाज विदेश से बहुत माल लेकर आया और अपने परिवार को भी लाद कर लाया। जब वह जहाज समुद्र के बीच में आया तो खतरे में पड़ गया। किसी भी प्रकार से वह उस खतरे से निकलकर आगे आया, किंतु उस जहाज के अंदर एक छेद हो गया और आठाने भर पानी भर गया। उसने कहा कि उस खतरे से तो बच गए, परंतु जो जहाज को चलाने वाला था उसने कहा उस खतरे से तो बच गए पर अब मरोगे, क्योंकि नाव में पानी घुस रहा है, अब छोटी छोटी नौकाएं हैं, उन नौकाओं में चले जाओ, बचोगे नहीं तो नहीं बचोगे। उस व्यापारी ने बड़ी बुद्धिमानी की, वो जो छोटी छोटी डुग्गियां थी उनमें माल भरना चालू कर दिया। ये इतना सा छेद है, पानी भरते इसको समय लगेगा, जितने तो मैं निकल जाऊंगा। सबको भर लिया, परिवार को भी बचा लिया, और जहाज धीरे धीरे डूब गया और व्यापारी परिवार और धन समेत बच गया। ऐसे ही अपने व्यापारी हैं। ये जो मेरा मेरा पना है ना, ये भार है। और जो आयु बीत रही है वही जहाज में पानी भरने के समान है। जिसकी आयु आठाने बीत गई, अर्थात आधी आयु बीत गई, तो अरे अब तो जहाज डूबने वाला है और अंत में जरूर डूबेगा। इसलिए बुद्धिमान वो है जो मैं और मेरा रूपी माल है उसको भर भर के बचा ले। जिस चीज पर अपना अधिकार है उसको नौका से बचाओ और छोटी छोटी छोटे छोटे नौकाओं में भर दो, अर्थात भगवान का नाम है, दूसरों का हित है, दूसरों की प्रशंसा है और सेवा है, ये सब सद्गुण है, इनको बचाओ, ये धन है आपका। और आप भी कूद जाओ, कूद जाने का अर्थ है इस शरीर से अभिमान उठा दो। पोल समझ में आ जाए फिर क्या है, शरीर तो नाशवान है, शरीर तो मेरा, संसार शरीर मेरा हो ही नहीं सकता, फिर क्यों मेरा मानते हो। इसलिए अहंकार का त्याग करो। जैसे हम सारे संसार को पराया समझते हैं, उसी तरह अपने शरीर को भी पराया समझो। हम तो कहते हैं कि पहले ही पहले अपने शरीर को ही पराया मानो ना, क्योंकि शरीर और संसार एक जाति के हैं। इस शरीर में अहमता तो हमने की है। आप अपने को आत्मा मानते हो तो आत्मा पर टिके रहो, टिकते नहीं हो। बोलने के लिए कहता हूं हां आत्मा है, हां आत्मा है, टिकते कहां हो। सब आत्मा ही आत्मा है, जिसकी आत्मा बड़ी हो जाए वो महात्मा। सब हमारा ही शरीर है, या तो ऐसा मान लो, और या कुछ भी नहीं है ऐसा मान लो। ये बातें अंदर के समझ से समझनी चाहिए, फिर कल्याण ही कल्याण है। अपने को आनंद के सागर में डुबाओ, समझो कि इस संसार में तो आनंद के अलावा कुछ है ही नहीं। विज्ञान आनंद घन परमात्मा सारे प्राणियों के चारों ओर है। जैसे बर्फ की कोई नगरी है, उसके चारों ओर पानी 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 है। संपूर्ण प्राणी आनंद के ही है। जैसे बर्फ ही जर बनता है, उसी तरह हम आनंद बन जाएंगे। यह विज्ञान आनंद घन का ध्यान है। हम आनंद का आस्वादन लेओ। आनंद परमात्मा है, इस प्रकार परमात्मा का आस्वादन करो। आनंद के सिवा कुछ नहीं है ऐसा अनुभव करो। आनंद का निरंतर पान करो, हर वक्त उस रस का पान करो जो हमारे पास है। बोध आनंद, ज्ञान आनंद, अपार आनंद, सहज आनंद, इस प्रकार आत्मा से अनुभव करना चाहिए। यह मानने लग जाए कि आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, तो आपके आनंद ही आनंद हो जाएगा। कल्प वृक्ष के नीचे जाकर कोई कहे अरे यहां सिंह आ गया तो सिंह आ जाएगा, और कल्प वृक्ष के नीचे जावेर कहे कि यहां भगवान आ जाए तो भगवान आ जाएंगे। उस प्यारे प्रभु की मनमोहिनी मूर्ति है, उसको हर वक्त देखूं। उसका रूप मन के नेत्रों से देखो, उसके प्रभाव को देख देख करके मुग्ध हो जाओ। आनंद ही आनंद है, ऐसा करते करते प्रत्यक्ष आनंद आने लग जाएगा। उस प्रेममयी मूर्ति को देखते रहना चाहिए। एक बार इस रस का थोड़ा चस्का तो ले, जरा सा आपको इसका स्वाद आएगा, फिर आप प्रभु को कभी भूल नहीं सकते। जो अपना खास काम है उस तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अपने परिवार में आपस का जो व्यवहार है वो इस ढंग से होना चाहिए कि इनका भगवान में प्रेम कैसे हो, ऐसा समझ करके बर्ताव करना चाहिए। इसमें घाटे का काम ही नहीं है, बहुत बड़ा मुनाफा है। आप लोगों की आदत हर काम में मुनाफा देखने की है, इसलिए हमने आपको कहा है कि मनुष्य शरीर को क्षणिक समझकर प्रभु की तरफ मन लगाओ। ये नियम सही बना लेना चाहिए कि आज से हम यथाशक्ति कभी भी प्रभु को भूलेंगे नहीं, पकड़े ही रहेंगे, आनंद मिलेगा। भगवान के चरणावा चरणारविंद को पकड़े रहना। शंकर जी कहते हैं कि ईश्वर के चरणारविंद को पकड़ना ही इस संसार में हमारा सहारा है। प्रभु को कभी नहीं भूलना चाहिए। जहां नेत्रों की दृष्टि जाए वहीं प्रभु है। इस घोर निद्रा से जगो, ये अज्ञान की निद्रा बहुत बाधा दे रही है। हम तो आपसे फिर निवेदन करते हैं, घोर अनर्थ हो जाएगा सज्जनों, अभी चेत कर लो। जिनको देख करके मन में आज मुदित हो रहे हो, ये आपके कोई काम आने वाले नहीं है। हम लोगों का जन्म किस बात के लिए हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं? करना चाहिए था आत्मा का सुधार उद्धार, और कर रहे आत्मा का पतन। भावना रखो सबका कल्याण हो। हे प्रभु, हे दयालु, सबका कल्याण करो। हे दीन बंधु, अब ये हमारे हाथ की बात नहीं रही प्रभु, हमारी नौका अब डूब रही है, पार लगाओ प्रभु। रो तो सही, कहां रोना लगा दिया संसार के लिए, भगवान के लिए रो। कितना बड़ा घाटा लगता है उसके लिए तो रोते नहीं, और रुपया का घाटा लगता है रोते हो, आदमी मर गया तो रोते हो। ये रोना बदल दो, अपने आप के लिए रो, बाप के लिए मत रो। भगवान के तो भक्त ऐसे हैं कि सबके हित के लिए नरक में भी जाने के लिए उत्साहित हैं, पर सबका हित चाहने वाला, कल्याण को चाहने वाला कभी नरक में नहीं जाता। इसलिए उठो, जागृत उत्तिष्ठत परान निबोधत। श्रेष्ठ पुरुषों से बातें सुनो और सावधान हो जाओ। नारायण नारायण।